नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ ने तिरुपारन कुंद्रम पहाड़ी पर स्थित दीपथून स्तंभ पर दीपक प्रज्वलित करने की अनुमति देने वाले आदेश को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन और के राधाकृष्णन की खंडपीठ ने कहा कि जिस स्थान पर दीपथून नामक पत्थर का स्तंभ है वो भगवान सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर का है। पीठ ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से परामर्श के बाद दीपक जलाया जा सकता है। अदालत ने कहा है कि इसमें सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या निर्धारित की जा सकती है। एक रिपोर्ट।
हिंदू मुन्नानी के अधिवक्ता और याचिकाकर्ता निरंजन एस कुमार ने बताया कि खंडपीठ ने कहा है कि दीपक जलाना अनिवार्य है और इसे तिरुपारन कुंड्रम पहाड़ी की चोटी पर ही जलाया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता राजेश ने भी न्यायालय के आदेश की प्रशंसा करते हुए कहा कि दीप थून के रूप में दीपक जलाया जाना चाहिए और मंदिर प्रशासन को इसके लिए आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये फैसला तमिलनाडु में हिंदुओं और भगवान मुरुगन के श्रद्धालुओं की जीत है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
भारतीय जनता पार्टी ने इस फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पीयूष गोयल ने कहा कि इस फैसले से तिरुपारन कुंड्रम पहाड़ी पर प्राचीन मंदिर के श्रद्धालुओं को न्याय मिला है जहां भगवान मुरुगन विराजमान हैं। निर्वाचन आयोग ने विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR के बाद उत्तर प्रदेश की मसौदा मतदाता सूची जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिनवा ने आज दोपहर लखनऊ में मीडिया को बताया कि मौजूदा मतदाता सूची के 81.3% मतदाताओं ने नई मसौदा मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराया है।
इलेक्ट्रॉन रोल को हमने पब्लिश किया है और इसका नेट रिजल्ट ये निकला कि जो 15,44,30,092 मतदाता थे उनमें से जिनके गणना प्रपत्र जो रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जीवित हैं या तो स्वयं ने हस्ताक्षर करके दिया या उनके परिवार के किसी वयस्क सदस्य ने हस्ताक्षर करके दिया, वो गणना पत्र जो हमारे पास आए वो थे 12,55,56,025।
श्री नवदीप रिनवा ने कहा कि दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 6 जनवरी से 6 फरवरी तक निर्धारित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखा रिफाइनरी में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की अवशेष उन्नयन सुविधा के सफल संचालन की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के एक पोस्ट को साझा किया है। श्री मोदी ने कहा कि अत्याधुनिक परिसर आत्मनिर्भर भारत की भावना के अनुसार ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज देश की 5 शास्त्रीय भाषाओं तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और उड़ीसा की 55 दुर्लभ साहित्यिक कृतियों का विमोचन किया। इन पुस्तकों का प्रकाशन केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान द्वारा किया गया है। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा कि भारतीय भाषाएं समाज को एकजुट करती हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सभी भारतीय भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं। श्री प्रधान ने बताया कि पिछले वर्ष सरकार ने कई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU ने दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज होने के बाद कुछ छात्रों द्वारा भड़काऊ नारे लगाने की घटना का संज्ञान लिया है। विश्वविद्यालय ने JNU छात्र संघ से जुड़े इन छात्रों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी इस घटना की निंदा की है। पार्टी नेता प्रदीप भंडारी ने नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि विरोध प्रदर्शन चरमपंथी विचारों को बढ़ावा देने का प्रयास है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रेडेन से मुलाकात की। इस दौरान भारत और लग्जमबर्ग के बीच वित्तीय सेवाओं, निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर चर्चा हुई। डॉ. जयशंकर ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। विदेश मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ के मजबूत संबंधों के लिए लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री के समर्थन का धन्यवाद किया। भारत की अनाहत सिंह ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई हैं। बर्मिंघम में महिलाओं के अंडर-19 वर्ग के सेमीफाइनल में आज उन्होंने मिस्र के मलिका अलकारकसी को लगातार गेम में पराजित किया। फाइनल में उनका सामना यूरोपियन जूनियर चैंपियन और दूसरी वरीयता प्राप्त फ्रांस की लॉरेन बाल्टायन से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।